साधारण बिल के पास करने की विधि, प्रोसीजर ऑफ पासिंग एन ऑर्डिनरी बिल। साधारण बिल को कानून बनने से पहले निम्नलिखित पड़ावों में से गुजरना पड़ता है। एक, बिल का पेश किया जाना या बिल का प्रथम वाचन, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल और फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। साधारण बिल को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, परंतु साधारणतया 90% बिल पहले लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। यदि साधारण बिल को कोई प्राइवेट सदस्य पेश करना चाहता है तो उसको सदन के सभापति को कम से कम एक महीना पहले लिखित सूचना देनी पड़ती है। सूचना के साथ बिल की एक प्रति, बिल के उद्देश्यों तथा उस पर होने वाले व्यय आदि का भी विवरण पेश करना पड़ता है। सदन का अध्यक्ष संबंधित सदस्य के साथ विचार विमर्श करके बिल को पेश करने की आज्ञा मांगता है। स्पीकर साधारणतः बिल पेश करने की आज्ञा दे ही देता है तथा सदन को प्रार्थना करता है कि बिल पेश करने की आज्ञा दी जाए, कि सदन ध्वनिमत द्वारा ही दे देता है, वॉइस वोट द्वारा ही दे देता है। आज्ञा मिल जाने के बाद सदस्य बिल का शीर्षक पढ़ता है तथा बिल की एक प्रति सदन की मेज पर रख देता है। यदि सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्य बिल का समर्थन कर दें तो बिल पास समझा जाता है, तथा यदि सदस्य समर्थन ना करें तो बिल समाप्त हो जाता है। महत्वपूर्ण बिलों के उद्देश्यों के बारे में रोशनी डाली जाती है। इसके बाद बिल को सरकारी गजट में छाप दिया जाता है। सरकारी बिल जो कि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है का सरकारी गजट में छप जाना ही काफी होता है। इस बिल को पेश करने की आज्ञा मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती, इसको ही बिल का प्रथम वाचन समझा जाता है। दो, दूसरा वाचन, सेकंड रीडिंग। साधारणतः प्रथम वाचन के बाद दूसरे वाचन में इतना अंतर रख लिया जाता है कि बिल की आवश्यक कापियां करवाई जा सके। निश्चित दिन को संबंधित सदस्य उठकर बिल पर दूसरा वाचन करने की आज्ञा मांगता है। अध्यक्ष की ओर से जब आज्ञा मिल जाती है तो बिल पेश करने वाला सदस्य निम्नलिखित प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव पेश करता है। एक, बिल पर तुरंत विचार किया जाए। दो, बिल को किसी उचित कमेटी के पास भेजा जाए। तीन, बिल दोनों सदनों की संयुक्त कमेटी को सौंपा जाए। चार, बिल को लोक राय जानने के लिए प्रसारित किया जाए। बिल की महत्ता को मुख्य रखते हुए ऊपर लिखित प्रस्तावों में से कोई प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तथा बिल पर बहस शुरू कर दी जाती है। संबंधित सदस्य बिल के सिद्धांतों तथा उद्देश्यों पर रोशनी डालता है तथा विपक्षी दलों के सदस्यों को बिल के बारे में अपने विचार प्रकट करने का पूरा अवसर दिया जाता है। इसके बाद स्पीकर बिल पर मतदान करवाता है। यदि बिल पास हो जाए तो उसको अगली स्टेज में भेज दिया जाता है तथा यदि बिल रद्द हो जाए तो बिल समाप्त हो जाता है। सरकारी बिल यदि इस स्टेज में रद्द हो जाए तो इसे सरकार की पराजय मानी जाती है। यदि यह बिल पास हो जाए तो उसको संबंधित कमेटी के पास भेजा जाता है। तीन, कमेटी स्टेज। जिस कमेटी में बिल को भेजा जाता है उस कमेटी में बिल को पेश करने वाले सदस्य को भी नियुक्त कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विपक्षी दल के सदस्य भी उस कमेटी के सदस्य होते हैं। साधारणतः ऐसे सदस्यों को कमेटी के सदस्य बनाया जाता है जो बिल के बारे में पूरी जानकारी रखते हों। साधारणतः कमेटी के सदस्यों की संख्या 25 से 30 तक होती है। कमेटी में बिल की अलग अलग धाराओं पर विस्तार पूर्वक विचार किया जाता है। कमेटी आवश्यक समझे तो ऐसे व्यक्तियों की राय भी ली जा सकती है जिन पर बिल का प्रभाव होता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि कमेटी का सदस्य तो नहीं है परंतु बिल के बारे में पूरी जानकारी रखता हो। कमेटी के सदस्य कम होते हैं तथा बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में बिल पर विचार किया जाता है। विपक्षी दल के सदस्यों को अपने विचारों को ठीक रूप में प्रकट करने का अवसर मिलता है। पेज 236। क्योंकि यहाँ सदस्य अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाते, जबकि सदन में सरकारी सदस्य विरोधी दल की किसी भी बात को स्वीकार करना अपनी हेठी समझते हैं। कमेटी की कार्यवाही गुप्त रखी जाती है तथा कमेटी सदन को निम्नलिखित सिफारिशें करती है। एक, बिल में संशोधन किए जाए। दो, बिल को बिना किसी संशोधन के पास कर दिया जाए। तीन, बिल को पास न किया जाए। कमेटी अपने संशोधनों सहित बिल पर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है तथा उसको वापस सदन में भेज देती है। हमारे देश में कमेटी को वापस बिल सदन में भेजना ही पड़ता है। कमेटियां बिल को समाप्त नहीं कर सकती, इसके विपरीत अमेरिका में कमेटियों के पास इतनी अधिक शक्तियां हैं कि वे बिल को सदन में वापस भेजने के लिए बाध्य नहीं हैं। चार, रिपोर्ट स्टेज। बिल को चौथे स्तर पर रिपोर्ट स्टेज में से गुजरना पड़ता है। कमेटी द्वारा सदन में बिल के बारे में भेजी गई रिपोर्ट पर विचार करने के लिए तिथि निश्चित कर ली जाती है। निश्चित तिथि को बिल को पेश करने वाला सदस्य कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सदन को प्रार्थना करता है। बिल को संशोधन कमेटी की सिफारिशों सहित कापियां करवाकर सदन के सदस्यों में बांट दी जाती हैं। इस स्तर में बिल की प्रत्येक धारा पर विचार किया जाता है। प्रत्येक धारा पर सदस्यों द्वारा संशोधन पेश किए जाते हैं। वाद विवाद होता है तथा अच्छी तरह विचार विमर्श हो चुकने के बाद मत करवाए जाते हैं तथा बिल को पास कर दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक धारा पर विचार विमर्श किया जाता है। सदन के अध्यक्ष द्वारा यदि सदन के पास समय की कमी हो तो बिल पर विचार करने के लिए समय निश्चित कर दिया जाता है तथा अध्यक्ष उस समय के बीच बहस को बंद करवा सकता है। बिल का यह सबसे नाजुक स्तर होता है। जो बिल इस स्तर में से गुजर जाता है उसके असफल होने के अवसर बहुत ही कम रह जाते हैं। यदि बिल इस स्तर में पास हो जाता है तो अगले स्तर के लिए रख लिया जाता है। पांच, तीसरा वाचन, थर्ड रीडिंग। एक सदन में यह बिल की अंतिम अवस्था होती है। कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद बिल पर तीसरे वाचन के लिए तिथि निश्चित की जाती है। इस अवस्था में बिल की प्रत्येक धारा पर विचार नहीं किया जाता अपितु बिल के आम सिद्धांतों पर बहस की जाती है। इसके अतिरिक्त बिल की शब्दावली तथा अन्य व्याकरणिक गलतियों पर विचार किया जाता है, क्योंकि कोशिश की जाती है कि बिल में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनके अर्थ निश्चित हों। नहीं तो अलग अलग लोग उसकी भाषा का लाभ उठाकर बिल के अर्थ निश्चित ही बदल लेंगे। बिल की यह अवस्था औपचारिक ही होती है तथा इस अवस्था में बिल रद्द नहीं होता। विचार विमर्श के बाद मत लिए जाते हैं तथा यदि बिल बहुमत से पास हो जाए तो बिल को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। बिल दूसरे सदन में, बिल इन द सेकेंड हाउस। दूसरे सदन में भी बिल को ऊपर लिखित सभी स्तर पास करने पड़ते हैं जो कि उसने पहले सदन में पास किए हैं। दूसरा सदन बिल के बारे निम्नलिखित दो बातें कर सकता है। एक, बिल को बिना संशोधन के पास कर सकता है। दो, बिल को अस्वीकृत कर सकता है। यदि दूसरा सदन 6 महीने तक बिल पर कोई कार्यवाही नहीं करता तो इससे बिल दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत समझा जाता है। यदि दूसरा सदन बिल में संशोधन करके बिल को वापस भेज देता है या बिल को अस्वीकृत कर देता है तो राष्ट्रपति 6 मास का समय बीतने के बाद दोनों सदनों के बीच पैदा हुए विवाद को समाप्त करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, जिसमें यदि बिल पास हो जाता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है तथा यदि अस्वीकृत हो जाता है तो बिल समाप्त हो जाता है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक 3 बार राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। पहली बार 1961 में दहेज विरोधी बिल, डाउरी प्रोहिबिशन बिल। दूसरी बार 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग रद्द करने से संबंधित बिल, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल। और तीसरी बार 2002 में आतंकवाद निरोधक बिल, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल के पास करने संबंधी दोनों सदनों के बीच पैदा हुए मतभेदों को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। पेज 237, राष्ट्रपति की स्वीकृति, अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। संसद द्वारा पास हो जाने के बाद बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद बिल कानून बन जाता है, परंतु यदि राष्ट्रपति बिल अस्वीकृत कर देता है अथवा बिल में संशोधन कर देता है तो बिल संसद के पास वापस आ जाता है तथा संसद राष्ट्रपति द्वारा किए गए संशोधन को मानने के लिए प्रतिबद्ध नहीं। संसद यदि बिल को उसी प्रकार ही दोबारा पास कर देती है तो राष्ट्रपति को बिल पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने के बाद बिल कानून बन जाता है तथा उसे कानून की किताब स्टैट्यूट बुक में प्रकाशित कर दिया जाता है।